पेरिस, जब भी ये नाम सुनती हूँ तो जहन में एफिल टावर, शांज़लीज़े और हाँ अजायब घर आते हैं।
बिल्कुल।
लेकिन पेरिस में अजायब घर सिर्फ आप जानते हैं लूव्र या ओर्से तक ही तो नहीं है ना, ये तो एक पूरी अलग ही दुनिया लगती है।
जी बिल्कुल सही कहा आपने, ये एक वसी और काफी पेचीदा निजाम है।
तो आज हम सिर्फ मशहूर नामों के बारे में बात नहीं करेंगे, हमारे पास ना पेरिस के अजायब घरों की एक काफी तफसीली फहरिस्त है और हमारा इरादा है कि इस फहरिस्त को जरा गहराई से देखें, समझें कि ये पूरा सिस्टम चलता कैसे है, कितना बड़ा है और उसमें क्या क्या छुपा हुआ है।
अच्छा ख्याल है,
तो चले खोलते हैं ये पटारी।
जरूर। तो देखिए, पहली बात तो ये कि पेरिस में अजायब घरों की तादाद वाकई वाकई बहुत ज्यादा है और उनमें तनाव भी गजब का है। मतलब हर जौक, हर दिलचस्पी के लिए कुछ ना कुछ है। उनको समझने का एक तरीका यह है कि उनकी इंतजामी तकसीम को देखा जाए। मोटे तौर पर तीन किस्में बनती हैं।
तीन किस्में? अच्छा, कौन कौन सी?
सबसे पहले तो हैं कौमी अजायब घर, नेशनल म्यूजियम्स। ये रियासत के जेर इंतजाम होते हैं, मतलब मुख्तलिफ वजारतों या अवामी इदारों के तहत। इनका दायराकार अक्सर बहुत बड़ा होता है, बड़े तारीखी मजमुए होते हैं इनके पास।
जैसे लूव्र?
बिल्कुल, शहरा आफाक म्यूजिय दी लूव्र, लूव्र म्यूजियम। ये फ़नून लतीफ़ा और आसार कदीमा का मरकज है और ये एक खुद मुख्तार अवामी इदारा भी है, यानी EPA, एतैब्लिशमेंट पब्लिक अ कैरेक्टर एडमिनिस्ट्राती।
फिर म्यूजे दौर से है जो खास तौर पर इम्प्रेशनिज्म,
यानी वो जो 19वीं सदी की आर्ट तहरीक थी, रोशनी और लम्हाती तासुरात वाली।
जी बिल्कुल वही, इम्प्रेशनिज्म और पोस्ट इम्प्रेशनिज्म के लिए मशहूर है। और सेंटर पोम्पेडू के अंदर म्यूजे नासिनाल दात मॉडर्न, जो जदीद और असरी आर्ट पर फोकस करता है।
तो मतलब ये कौमी अजायब घर एक तरह से मुल्क के सकाफती विरसे के बड़े मुहाफिज हुए। हाँ, एक लिहाज से कह सकती हैं। अच्छा, दूसरी किस्म है पेरिस शहर के अजायब घर, म्यूजियम्स ऑफ द सिटी ऑफ पेरिस VP। ये बराह रास्त पेरिस म्यूनिसिपैलिटी के अंडर आते हैं। इनका फोकस ज्यादातर शहर की अपनी तारीख या उसके अपने आर्ट पर होता है।
जैसे वो पेरिस की तारीख वाला म्यूजियम है ना, मूजे कार्नावले?
कार्नावले म्यूजियम,
बिल्कुल वही, वो पूरी तरह पेरिस की तारीख के लिए वक्फ है। या फिर पिटी पैले है, जो शहर का अपना फनून लतीफ़ा का म्यूजियम है और इनमें से कई में दाखिला भी अक्सर मुफ्त होता है।
अच्छा, ये तो अच्छी बात है। और तीसरी किस्म है निजी अजायब घर, प्राइवेट म्यूजियम्स भी। ये निजी इदारे, फाउंडेशंस या एसोसिएशंस चलाते हैं। यहाँ अक्सर आपको ज्यादा मखसूस या क्या कहते हैं नीश मौजूआत मिलेंगे।
जैसे?
जैसे फाउंडेशन लुई वुटोंग, जो असरी आर्ट की नुमाइशों के लिए मशहूर है, या वो मोमी मुजस्मों वाला म्यूजियम ग्रिवन, और म्यूजियम मार्बटों क्लॉद मोनिए, जिसमें मोनिए के काम का बहुत बड़ा जखीरा है।
एक एक किरदार, उसके मजमुए, शायद उसकी फंडिंग, इन सब पे असर डालती होगी।
यकीन है।
लेकिन इंतजामिया से हटकर भी अगर मौजूआत को देखें तो ये फहरिस्त तो हैरान कर देती है। मतलब मशहूर आर्ट म्यूजियम्स तो हैं ही, लूव और से पोम्पिडू, और हाँ म्यूजे रौदा म्यूजियम भी।
जी,
लेकिन अगर तारीख में दिलचस्पी हो तो कार्नावलेट तो है ही, साथ में म्यूजे दलार में या फौजी तारीख या मेमोरियल द ला शॉ या होलोकास्ट मेमोरियल जैसे मकामात भी हैं। और कुछ जगहें तो पूरी तरह मखसूस शख्सियात के लिए वक्फ है, जैसे म्यूजे पिकासो या मेजोन दी विक्टर यूगो का घर।
सही।
साइंस और टेक्नोलॉजी में दिलचस्पी रखने वालों के लिए म्यूजे दिजार्स एमेते या म्यूजियम नेशनल डिस्तवार नेचुरल है। और कुछ तो मैं क्या कहूँ, बिल्कुल ही अनोखे हैं। मुझे तो देखकर बड़ी हैरत हुई कि फहरिस्त में म्यूजे दोपारफा यानी अत्र का म्यूजियम, म्यूजे दिला माजी जादू का म्यूजियम, और ये भी 2024 में एक म्यूजे वीवॉन्ट टू फ्रोमाज पनीर का जिंदा म्यूजियम भी खुल रहा है। पनीर का म्यूजियम?
जी हाँ, ये तनवो ही तो पेरिस की सकाफती जिंदगी की असल पहचान है। अच्छा, एक और दिलचस्प पहलू है जिसका जिक्र इस फेरिस्ट में मिलता है, वो है म्यूजे द फ्रांस का लेबल।
म्यूजे द फ्रांस, ये क्या चीज है? कोई खास रैंकिंग है?
रैंकिंग तो नहीं, लेकिन ये एक सरकारी शनाख्त है, आप कह लें एक तरह की क्वालिटी की मोहर है। ये उन अजायब घरों को दी जाती है जिनके मजमुए कौमी अहमियत के हामिल समझे जाते हैं और जो अवामी खिदमत, तालीम और तहकीक के कुछ खास मयार पूरे करते हैं।
अच्छा,
और ये लेबल قومی، شہری یا نجی کسی بھی قسم کے عجائب گھر کو مل سکتا ہے، مثلاً لوور، اولسے اور کارناولے، ان سب کو یہ لیبل حاصل ہے۔ لیکن مثال کے طور پر فوٹوگرافی کے لیے جو مشہور جگہ ہے جوگ پوم، اسے یہ لیبل حاصل نہیں۔
تو اس لیبل کا فائدہ کیا ہوتا ہے وقار کے علاوہ؟
وقار تو ہے ہی، لیکن بعض اوقات اس سے اضافی فنڈنگ یا ریاستی مدد حاصل کرنے میں بھی آسانی ہوتی ہے۔ اچھا، ایک اور بات، جغرافیائی طور پر بھی یہ عجائب گھر صرف شہر کے مرکز میں نہیں ہے۔
ہاں، یہ تو میں نے بھی نوٹس کیا تھا۔
جی، پہلا ارونڈیاسیما یعنی ضلع، وہ تو لوور کا مرکز ہے، لیکن تیسرا اور چوتھا ضلع جو تاریخی مارے کا علاقہ ہے، وہاں بھی کئی اہم عجائب گھر ہیں، جیسے پکاسو میوزیم اور کارناولے۔ ساتویں ارونڈیاسیما میں آپ کو اورسے، روڈین اور میوزے دلار میں ملیں گے۔ تو مطلب پورا شہر ہی ایک طرح سے عجائب گھروں سے بھرا پڑا ہے۔
اور یہ منظرنامہ ایسا لگتا ہے ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا۔ فہرست میں کچھ ایسے عجائب گھروں کا بھی ذکر ہے جو اب بند ہو چکے ہیں یا جن کے مجموعے کہیں اور منتقل ہو گئے ہیں۔
بالکل، یہ کوئی جامع چیز نہیں، یہ ایک زندہ بدلتا ہوا نظام ہے۔ مثال کے طور پر افریقی اور اوشانیائی آرٹ کا جو پرانا میوزیم تھا، میوزی نیشنل دیز آد افریق ادوسیانی، اس کے مجموعے اب نئے میوزے دو کے برینلی میوزیم کا حصہ بن گئے ہیں۔ اسی طرح یہودی آرٹ کا میوزی دار جویف تھا، اس کا مواد اب میوزے دارٹ اے دستار دو جدائزم میں ضم ہو گیا ہے۔
تو یہ تبدیلیاں کیوں ہوتی ہیں؟ ثقافتی ترجیحات بدلتی ہیں یا فنڈنگ کے مسائل ہوتے ہیں؟
دونوں باتیں ہو سکتی ہیں، کبھی ترجیحات بدلتی ہیں، کبھی فنڈنگ کا مسئلہ ہوتا ہے، اور کبھی مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ مجموعوں کو بہتر، زیادہ مربوط انداز میں پیش کیا جائے۔
تو ان سب باتوں کا خلاصہ کیا نکلا؟ مطلب یہ تو واضح ہے کہ پیرس عجائب گھروں کے معاملے میں ناقابل یقین حد تک امیر شہر ہے، اور اتنا متنوع کہ شاید ہی کوئی ایسی دلچسپی ہو جس کے لیے یہاں کچھ نہ ملے، بڑے قومی اداروں سے لے کر چھوٹی خاص نجی کلیکشنز تک، اور مشہور آرٹ سے لے کر جیسا آپ نے کہا پنیر اور جادو تک۔
یقیناً، اور یہ فہرست ہمیں یہ بھی یاد دلاتی ہے کہ جو چند نام ہم سب جانتے ہیں، ان سے آگے بھی ایک پوری کائنات ہے دریافت کرنے کے لیے۔ تو شاید سوچنے کی بات یہ ہے کہ پیرس کی ثقافت یا تاریخ کا کون سا ایسا کم معروف انوکھا پہلو ہے جسے دکھانے والا کوئی پوشیدہ عجائب گھر ابھی منتظر ہے۔
ہاں،
اور کیا پتا کسی کے اگلے پیرس کے سفر کا سب سے یادگار تجربہ وہی بن جائے۔